दोस्तों, रविवार का दिन वह दिन होता है जिसे हम आराम और छुट्टी का दिन कहते हैं। इस दिन पंजाब का आराम गायब हो जाएगा, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हाँ जी दोस्तों, ये दिन वही दिन था जून 1984, जिस दिन पंजाब के वातावरण में खामोशी छा चुकी थी। 1984 की घटना ने पंजाब को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आखिर क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार, आज जानेंगे समझेंगे इस ऑपरेशन के हर पहलू को। आपके साथ मैं हूं सिमरन। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं बरसी पर ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी लेकर भारत सरकार ने जून 1984 में एक ऐसा कदम उठाया था कि जिससे पिछले 5 साल में हो रही राष्ट्रीय गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके, लेकिन इसका उल्टा नतीजा निकल कर आएगा ये सबकी सोच से परे था। जो चिंगारी 3 जून को लग चुकी थी उसने पूरे देश में आग फैलाई थी। उस समय दरबार साहिब यानी कि हरमंदिर साहिब में जब वाहेगुरु जी को याद करके पाठ किया जाता था, उसी दौरान गोलियों की आवाजें आने लगती थी। ये काफी दर्दनाक था, सिख और पंजाबी के लिए ही नहीं बल्कि देश के हर देशवासी के लिए। दोस्तों, इस घटना के दौरान और इस घटना के बाद एक का नहीं अनेकों का खून बहा था। इस घटना के होने का अंदाजा लगाना तब से शुरू हो गया था जब अप्रैल 1984 में जर्नैल सिंह भिंडरांवाले स्वर्ण मंदिर से सटे गुरु नानक निवास को छोड़कर अकाल तख्त जा पहुंचे थे। दरबार साहिब के बिल्कुल सामने अकाल तख्त है। अकाल तख्त को सिख धर्म में खास दर्जा दिया जाता है। भिंडरांवाले इसी स्थान पर रह रहे थे। भिंडरांवाले के साथ हमेशा परछाई की तरह उनके दो साथी रहते थे, एक अमरीक सिंह और दूसरे जनरल शाहबैग सिंह। पंजाब में पिछले काफ़ी समय से CRPF और भिंडरांवाले की फौज के बीच गोलाबारी होती आ रही थी। उस समय केंद्र सरकार ने इस गोलाबारी को रोकने के लिए 30 मई 1984 की रात को फौज के काफिले को अमृतसर और पंजाब में जाने की आज्ञा दी थी। वहीं दूसरी ओर भिंडरांवाले अपने साथियों के साथ सिखों के सबसे पवित्र स्थान दरबार साहिब में थे। 1 जून की रात 9 बजे अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया था और 24 घंटे में करीब 70,000 फौजी पंजाब में आ चुके थे। तब से ही पंजाब में विदेशियों के आने पर रोक लगा दी गई थी और मीडिया को बैन किया गया था। इसके साथ साथ रेल और हवाई सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई थी। उस दिन ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ भयानक होने वाला हो। 3 जून 1984 को गुरु पर्व का दिवस था। श्रद्धालुओं के मन में डर था, परंतु श्रद्धा डर से बढ़कर थी, इसलिए माथा टेकने और पाठ करने के लिए श्रद्धालु दरबार साहिब में एकत्रित हुए थे। वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना के द्वारा भिंडरांवाले को पकड़ने की पूरी तैयारी थी। 3 तारीख की शाम सुभाष, जो कि एक जर्नलिस्ट थे जो वहीं उपस्थित थे, उन्होंने बताया था कि गुरु ग्रंथ साहिब के आगे माथा टेकने और परिक्रमा के बाद जब वह प्रसाद के लिए आगे बढ़े तो उनकी नज़र कैनोपी पर गोलियों के निशान की तरफ पड़ी। वहीं सरकार का दावा था कि गोल्डन टेंपल पर एक भी गोली नहीं चलाई गई, लेकिन 200 से 250 गोलियों के निशान वहां दिख रहे थे। इसके बाद वह अकाल तख्त में भिंडरांवाले का इंटरव्यू लेने गए, जो भिंडरांवाले का अखीरी इंटरव्यू था। हर दिन रोशनी से चमकने वाला दरबार साहिब इस दिन सन्नाटे और अंधेरे से घिरा हुआ था। ऑफिसर्स लाउडस्पीकर पर घोषणा करते रहे और उन्होंने बार बार भिंडरांवाले को सरेंडर करने का आग्रह किया था और चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर सरेंडर नहीं किया गया तो खूनी जंग की नौबत आ जाएगी। कुछ देर बाद सामने से जवाब ना आया था। 4 जून की सुबह करीब 4 से 5 बजे गोलियों की आवाज़ें आनी शुरू हो गईं और इन आवाज़ों ने दरबार साहिब की शांति को भंग कर दिया था। इस दिन 10 भयानक ब्लास्ट हुए थे जिसने अमृतसर की धरती को हिलाकर रख दिया था। 5 जून की सुबह अमृतसर का दृश्य कोई वॉर फिल्म से कम नहीं था। दोनों तरफ से फायरिंग लगातार जारी थी। फौज को इस बात का डर था कि अगर ब्लू स्टार ऑपरेशन को ख़त्म नहीं किया गया तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसलिए उन्होंने अकाल तख्त में बैठे भिंडरांवाले को वहीं घुसकर मारने का फैसला लिया था। इस बड़े फैसले में अकाल तख्त को नुकसान पहुंचाना लाजमी बन चुका था क्योंकि फौज भिंडरांवाले की तलाश में थी और ऐसा होने से सिखों के दिलों को काफ़ी ठेस पहुंचना लाजमी था। फिर भी फौज अकाल तख्त की तरफ बढ़ी। उस दिन खून ही खून था। इतने पवित्र स्थान पर अंदर से ट्रक लाशें भर के चाटीविंड मुर्दा घर की तरफ बढ़ रहे थे। इसका मतलब यह था कि अंदर मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। ऑपरेशन शुरू हुए 3 दिन बीत चुके थे। 7 जून को आकाशवाणी में अनाउंसमेंट किया गया कि जर्नैल सिंह भिंडरांवाले की डेड बॉडी मिल गई है और दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। लेकिन कुछ ही देर में कर्फ्यू को जारी रखने का फैसला आ गया था। पंजाब की सड़कें लावारिस दिखाई दे रही थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बताया जाता है कि 300 से 400 लोगों की इस ऑपरेशन में मौत हुई थी, जबकि 90 सैनिक शहीद हुए थे। वहीं दूसरी ओर चश्मदीदों और एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जाता है कि करीब 1000 लोग इस ऑपरेशन में मारे गए और 250 जवान शहीद हुए थे। दोस्तों, ये कहानी थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की। अब आप फैसला करें कि आखिर ब्लू स्टार ऑपरेशन का होना लाजमी था या नहीं। इसी के साथ आप सभी से मैं अलविदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल शो द क्राइम स्टोरीज में। आपके साथ मैं हूँ सिमरन, अपना स्पेशल शो लेकर। आज की कहानी जेसिका लाल मर्डर केस की कहानी है कि आखिर क्या था जेसिका मर्डर केस और क्यों जेसिका का मर्डर किया गया और किसने किया और मीडिया की क्या भूमिका रही इस केस में। तो चलिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। जेसिका एक खूबसूरत और चर्चित मॉडल थी। जेसिका की हत्या 29 अप्रैल 1999 को दिल्ली के टैमरिड कोर्ट रेस्टोरेंट में गोली मारकर की गई थी। गोली मारने का कारण सिर्फ इतना था कि टाइम ओवर हो चुका था और जेसिका ने शराब सर्व करने से मना कर दिया था। जेसिका की हत्या जब हुई तब वह सिर्फ 34 साल की थी। जेसिका को टैमरिड कोर्ट रेस्टोरेंट में उस रात बार टेंडर का काम दिया गया था और इसके साथ साथ मनु शर्मा को भी यही काम सौंपा गया था। टैमरिड कोर्ट रेस्टोरेंट में जो पार्टी चल रही थी, ये पार्टी रेस्टोरेंट की मालकिन बीना रमानी की थी। बीना रमानी ने अपने पति जॉर्ज के लिए यह पार्टी रखी थी क्योंकि जॉर्ज 6 महीने के लिए वापस कनाडा जा रहा था, इसलिए ये पार्टी रखी गई थी। दोस्तों, उस रात मनु शर्मा ने जेसिका से और ड्रिंक सर्व करने को कहा, लेकिन जेसिका ने इनकार कर दिया और कहा कि ड्रिंक खत्म हो चुकी हैं। सत्ता और शराब के नशे में चूर मनु शर्मा इस बात को सहन नहीं कर पाया और उसने जेसिका को सबके सामने गोली मार दी और जेसिका की उसी समय मृत्यु हो गई। गोली चलने से हफरा तफरी हो गई और इसका फायदा उठाया मनु शर्मा और उसके दोस्तों ने और पार्टी से भाग गए। हम सब जानते हैं दोस्तों कि पुलिस की नज़रों से कोई बच नहीं सकता, तो मनु शर्मा कैसे बचता। आखिर पुलिस ने मनु शर्मा को पकड़ लिया था, लेकिन दुख की बात तो यह थी कि 7 साल तक ये मुकदमा चला, परंतु फरवरी 2006 को मनु शर्मा और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने इस फैसले में जब सुनवाई की तो इस फैसले का काफ़ी बड़ा परिणाम निकल कर आया और जेसिका के परिवार को इस फैसले ने काफ़ी बड़ा दुख दिया। लेकिन जेसिका की बहन सबरीना ने हार नहीं मानी, मोर्चा खोला। मीडिया ने भी जेसिका को इंसाफ दिलवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इसके बाद ये केस कोर्ट में फिर से चला और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दोस्तों अफसोस की बात तो यह थी कि ये केस शुरुआत में जब कोर्ट में चला तब एक एक करके सभी लोग पलट गए। जिस केस के विटनेस थे इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो यह थी कि जेसिका के साथ ड्रिंक सर्व करने वाला शायन मुंशी ने भी गवाही देने से मना कर दिया था। हालांकि जेसिका की बहन सबरीना और मीडिया की मदद से जेसिका को इंसाफ मिला, लेकिन दोस्तों क्या उस लड़की की यही गलती थी कि उसने ड्रिंक सर्व नहीं की और इतनी छोटी सी बात पर उसे गोली से मार दिया गया था। दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि आप नो वन किल टू जेसिका मूवी जरूर देखें। इस मूवी से आप समझ पाएंगे कि कैसे पैसा और सत्ता बड़े से बड़े विटनेस का मुंह बंद करवा सकता है। इस मूवी में मीडिया के रोल को भी दर्शाया गया है कि किस तरह से मीडिया ने जेसिका को इंसाफ दिलवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों अब इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।